हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। अनाही ने विहा को आंखें दिखाते हुए कहा, थोड़े दिनों में तुम्हारे सेमेस्टर स्टार्ट होने वाले हैं, प्लीज थोड़ा पढ़ाई पर ध्यान दे लो। अगर फेल हो गई ना, ससुराल में मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी, पहले वार्निंग दे रही हूँ। माधवी, जो राविया के आने से पहले से परेशान थी, अनाही और विहा की ये फुसफुसाहट उसे बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने गुस्से में कहा, क्या ये कोई वार्तालाप कक्षा है? यहाँ हम सब शांति से ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठे हैं, तुम दोनों बहनें चुप नहीं रह सकती। माधवी का ये लहजा वहाँ बैठे किसी शख्स को पसंद नहीं आया था, पर माधवी वहाँ सबसे बड़ी थी तो कोई उसको कुछ कह भी नहीं सकता था। पर विहा कहाँ शांत रहने वाली थी, उसने आंखें छोटी करते हुए कहा, ताई जी, मैंने तो सुना था उम्र बढ़ने के साथ लोगों के कान कमजोर हो जाते हैं। लगता है आपकी कैपेसिटी बढ़ती जा रही है, क्योंकि मैं कोई माइक में बातें नहीं कर रही हूँ, धीरे धीरे बोल रही हूँ। या फिर आपका ध्यान बाकी सब लोगों के बजाय सिर्फ हम दोनों बहनों पर ही है? डोंट वरी, हम आपकी चुगली नहीं कर रहे हैं, हमारी खुद की बातें खत्म नहीं हो रही हैं, हम आपकी चुगली कैसे करेंगे? उसकी बात सुनकर राविया को हंसी आ गई। वहीं बाकी सब शौक से विहा की तरफ देख रहे थे। अनंत ने पास बैठे वेदांत को कोहनी मारते हुए कहा, देखकर अच्छा लगा, तुम्हारी वाली भी कम नहीं है। मुझे लगा था सिर्फ मेरी और रुहान की लगने वाली है, पर यहाँ तो तुम्हारी भी फील्डिंग सेट है बेटा। वेदांत ने रोनी सूरत बनाकर अनंत की तरफ देखते हुए कहा, रोहान को कोई प्रॉब्लम नहीं है, अनाही बहुत समझदार है, मानता हूँ डेंजरस है, पर कम से कम उसे बुद्धि तो है। मेरी वाली को तुम जानते नहीं हो, बहुत खतरनाक है, फिलहाल चुप रहो, वरना पता नहीं उसकी आंखें हम पर आईं तो जरूर हम भी इस फसाद में फंस जाएंगे। माधवी ने गुस्से में कहा, बहू, तुम बहुत बदतमीज हो, वैसे तो तुम्हें ये सब निवेदिता को सिखाना चाहिए, पर अगर वो नहीं सिखा पा रही है तो मैं उसकी जेठानी हूँ, मुझे पूरा हक है तुम्हें सिखाने का, तो अपनी जुबान को काबू में रखना सीखो, बड़ों के सामने जुबान मत लड़ाया करो। अनाही ने विहा का हाथ पकड़कर उसे शांत करने की कोशिश की, पर विहा ने गुस्से में कहा, अभी अभी आपके सुपुत्र भी बातें कर रहे थे, आपकी नज़र उन पर नहीं गई? या फिर ये बाज जैसे कान सिर्फ हमारे लिए रखे हैं, इनका इस्तेमाल कभी अपनों के लिए भी किया जा सकता है? अनंत ने आंखें भिंचते हुए धीरे से फुसफुसाकर कहा, भाई, तू सही बोल रहा था, मुझे नहीं बोलना चाहिए था। वेदांत ने इस बार अनंत की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वहीं माधवी भी चुप हो चुकी थीं। उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं, पर उसके पास अब विहा के सवाल का कोई जवाब नहीं था। अनाही ने गहरी सांस लेकर माधवी की तरफ देखा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, थोड़ी सी मुँहफट है, आप इसकी बातों को दिल पर मत लीजिए, खाना ठंडा हो रहा है, बाकी सारी डिशेस भी टेस्ट करके बताइए कैसी बनी है। माधवी बस झल्लाक कर रह गईं और बाकी सब ने भी अनाही की बात को सही समझकर खाना खाना शुरू कर दिया। अनंत ने धीरे से कहा, भाई, सारा खाना मैंने बनाया है, बाकी का तो गलती से भी बुराई मत कर देना उसकी। उसकी इस बात पर वेदांत को हंसी आ गई। सब ने खाना टेस्ट करने के बाद खाने की तारीफ ही की थी। उसके बाद सब ने एक एक करके राविया को बहुत सारे तोहफे भी दिए, जिन्हें देखकर राविया तो हैरान ही रह गई। उसे बहुत स्पेशल बहू वाली फीलिंग आ रही थी, जिससे उसकी आंखों में पानी तक आ चुका था। पर उसने जैसे तैसे अपने आंसू छुपाकर माधवी के पास जाते हुए कहा, सासू माँ, वैसे मुझे इतने सारे तोहफों की जरूरत नहीं है, आप सब लोगों ने मुझे अपना लिया, ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा है। माधवी ने रूखेपन से कहा, तुम जैसे छोटे लोगों के लिए ये तोहफे बहुत ज्यादा ही हैं, पर ये हमारे खानदान की परंपरा है, बहू को इतने महंगे तोहफे ही देने चाहिए, अब तुम निमानी हाउस की बहू बनी हो तो ऐसे तोहफों की आदत भी डालनी पड़ेगी। अनंत ने राविया के पास जाकर उसके हाथ से आधे तोहफे लेते हुए कहा, चलो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ इन्हें रखवाने में। राविया ने आंखें उठाकर अनंत की तरफ देखा, जिसकी आंखों में माधवी के कहे हुए शब्दों के लिए नाराजगी थी, पर वो अपनी माँ को कुछ नहीं कहेगा ये हाविया को पता था। वो हल्का सा मुस्कुराई और फिर अनंत के पीछे कमरे में जाने लगी। सब कुछ होने के बाद अनाही ही एक गहरी सांस लेते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ा दिए, क्योंकि सच में वो बहुत थक गई थी। कमरे में जाकर उसने सारे पर्दे लगाते हुए एसी का टेम्परेचर सेट किया और बेड पर लेट गई। उसकी आंखों के सामने रुहान का शर्माता हुआ चेहरा आ रहा था। उसके दिल में अजीब सी गुदगुदी हो रही थी, बस ये सोचकर कि अगर रुहान सच में यूनिवर्सिटी टॉप करता है तो क्या वो उसे किस करेगी। सुबह तो उसने बोल दिया था, क्योंकि उसे और कोई बहाना नहीं सूझ रहा था रुहान को अपना 100% दिलवाने के लिए। अनाही पिलो को अपनी बाहों में भरते हुए हल्का सा मुस्कुराई और फिर तकिए में अपना मुंह छुपाते हुए बोली, अनाही क्या हो रहा है तुम्हें? कहीं पागल तो नहीं हो गई है तू? ऐसी तो नहीं थी? वहीं दूसरी तरफ विहा जल्दी से निवेदिता का हाथ पकड़ते हुए बोली, मम्मी जी चलिए हम अपनी सीरीज कंप्लीट करते हैं वरना हमारा हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन वेस्ट हो जाएगा। मैंने आज हॉलिडे भी ले लिया है, दीदी को भी मना लिया है। ये सुनकर निवेदिता ने आंखें बड़ी करते हुए कहा, अगर अनाही को पता चला कि ये सब तुमने हॉटस्टार की सब्सक्रिप्शन के लिए किया है वो तुम्हें बहुत डांट लगाएगी। विहा ने रोनी सी सूरत बनाकर कहा, आप तो मेरी प्यारी सी सासू माँ हो ना, प्लीज आज लास्ट है, उसके बाद नहीं करूँगी। वेदांत दूर से ही निवेदिता और विहा को बातें करते हुए देख रहा था। उसकी आंखों में विहा के लिए बढ़ते पलों में प्यार भी बढ़ रहा था। विहा के आने से उसकी माँ जैसे जिंदा लाश से अब इंसान बनने लगी थी। वो गुस्सा भी करती है, हंसती भी है और विहा को प्यार भी करती है जैसे बचपन में उसे करती थी, वरना वो निवेदिता तो कहीं गायब ही हो गई थी। वेदांत निवेदिता को हंसते हुए देखकर इमोशनल हो रहा था। उसके गले में हल्का दर्द उठ रहा था जैसे वो किसी भी पल रोने लग जाएगा, इसलिए उसने अपनी नजरें उन दोनों से हटा ली और हॉल से उठकर अपने कमरे में चला गया। निवेदिता भी विहा का हाथ पकड़ते हुए उसे अपने कमरे में ले जाने लगी। सीढ़ियां चढ़ते वक्त विहा ने तिरछी नजरों से माधवी को घूरते हुए कहा, आपको नहीं लगता मम्मी जी ताई जी मुझे कुछ ज्यादा ही कम समझने लगी हैं? बच्ची हूँ तो क्या हुआ, क्या मैं उनके सवालों के जवाब नहीं दे सकती हूँ? आइंदा अगर उन्होंने ऐसा किया तो मैं फिर से ऐसा ही जवाब दूंगी। दीदी तो मुझे रोक रही थी पर मैं उनके रोकने से भी नहीं रुकूंगी। आप बताओ आप किसकी साइड हो? तब तक वे दोनों गैलरी में पहुंच चुके थे। निवेदिता ने रुककर विहा का चेहरा अपने हाथों में भरा और फिर प्यार से उसका माथा चूमते हुए बोली, मैं हमेशा अपनी बेटी की तरफ खड़ी रहूंगी, अब खुश? विहा ने जल्दी से निवेदिता के गले लगाते हुए कहा, बहुत ज्यादा खुश। वो दोनों भी अपने कमरे में चली गईं। वहीं कमरे में जाते ही अनंत ने तोहफों को एक तरफ रखकर राविया का हाथ पकड़ते हुए कहा, मेरी माँ की बातों का बुरा मत मानना, उन्हें आदत है अपनी रईसी दूसरे लोगों को दिखाने की, पर एक दिन तुम उनसे ज्यादा रईस बन जाओगी, मैं तुमसे वादा करता हूँ। राविया ने भरी आंखों को उठाकर अनंत की आंखों में देखते हुए कहा, तुम तो ऐसी बातें कर रहे हो जैसे पूरी जिंदगी मेरा ख्याल रखोगे और मुझे रईस बनाओगे, हम तो सिर्फ 3 महीने साथ रहने वाले हैं ना? अनंत ने नजरें झुकाते हुए कहा, पता नहीं पूरी जिंदगी साथ रहने वाला हूँ या नहीं, पर इन 3 महीनों में जिंदगी कैसी होती है जरूर तुम्हें सिखा दूंगा। कुछ पल वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। उसके बाद राविया ने पलके झुकाते हुए अपना हाथ अनंत से छुड़ा लिया और फिर मुड़ते हुए झुककर एक एक तोहफे को देखने लगी जो बहुत ही खूबसूरत थे। किसी में गहने थे तो किसी में उसके लिए महंगे परफ्यूम्स।
तभी अचानक अनंत की नजरें उसकी पीठ पर गईं, जहां नीले निशान बने थे। शायद इसके बारे में डॉक्टर भी बात कर रही थी। उन्हें देखकर अनंत की आंखें फैल गईं।